विहारे। गोपी जना बाला गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारे यशोदा नंदन ब्रज निरंजन यशोदा नंदन ब्रजजन रंजन जमुना तीरा बनसारे जमुना तीरा बनसारे जयो राधा माधव कुंज विहारे जयो राधा माधव कुंज विहारे गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारे यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरा बनचारी राधा माधव कुंज विहारे जय राधा माधव
विष्णुवाद वंशराज का चार स्वान गिरी शिष्य भक्ति विदान स्वामीवाद की जय जय विष्णुवान तला वृष्ण भक्ति सिद्धान सस्तु गुरु स्वामी त्रोवाद की जय आनंद कोटि वैष्णव बिंद की जय रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय ग्रंथराश्रम भागवतम की श्री श्यामानंद प्रभु की जय निताय गौर हरि प्रमाण ॐ नमः भगवते वासुदेवाय ॐ नमः भगवते वासुदेवाय ॐ नमः भगवते वासुदेवाय हिंदी अंग्रेजी तो हिंदी किताब चाहिए हिंदी किताब कहाँ है तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं भागवत महापुराण के चौथे स्कंध अध्याय 24 और श्लोक संख्या 50 इस अध्याय का नाम है रुद्र गीत भगवान की शिव के द्वारा गाया गया स्तुति पूरा रेचका संविघ्ना बलि बलगु दला ఉదరం ప్రతి సంక్రామయత్ విశ్వం నాభ్య ఆవర్త గభీరయా పురరేచక సంవిఘ్న పురరేచక సంవిఘ్న బలి బల్గో బలి బల్గూదలోరదరం బలి బల్గూదలోదరం ప్రతి సంక్రామయా విశ్వం ప్రతి సంక్రామయా విశ్వం నాభ్యావర్త గభీరయా నాభ్యాగర్త గభీరయా పురరేచక సంవిఘ్న పురరేచక సంవిఘ్న బలి బల్గూలదోదరం బలి బల్గూదలోదరం ప్రతి సంక్రామయా విశ్వం ప్రతి సంక్రామయా ద్విశ్వం నాభ్యావర్త నాభ్యావర్త గభీరయా నాభ్యావర్త గభీరయా పురరేచక సంవిఘ్న బలి బల్గూదలోదరం ప్రతి సంక్రామయా విశ్వం నాభ్యావర్త గభీరయా మాతాజీ పురా శ్వాస రేచక నిశ్వాస సంవిఘ్న చలాయమాన్ బలి ఉదర్ మే పడనే వాలీ సిల్వటే సికుడన్ వల్గు సుందర్ దళ పీపల్ కే పత్తే కే సమాన్ ఉదరం పేట్ అతి సంక్రామయత్ నీచే కీ ఓర్ భంవరదార్ విశ్వం బ్రహ్మాండ్ నాభ్యా నాభి ఆవర్త కుండలి गभीरया, गहराई में। अनुवाद और तात्पर्य भक्ति विदान स्वामी प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद की। भगवान का उदर त्रिवली के कारण सुंदर लगता है, गोल होने के कारण उनका उदर पीपल के पत्ते के समान जान पड़ता है, और जब वे श्वास प्रश्वास लेते हैं तो ये त्रिवलियां अत्यंत सुंदर प्रतीत होती है। भगवान की नाभि के भीतर की कुंडली इतनी गहरी है मानो सारा ब्रह्मांड उसी से उत्पन्न हुआ हो और पुनः उसी में समा जाना चाहता है। तात्पर्य, यह संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान की नाभि से निकले कमल लाल से उत्पन्न हुआ। तब ब्रह्मा जी ने इस कमल लाल के ऊपर आसीन होकर सारे ब्रह्मांड की रचना की। भगवान की नाभि इतनी गहरी तथा चक्करदार है कि मानो सारा ब्रह्मांड उनकी शोभा से आकृष्ट होकर पुनः उसी के भीतर समा जाना चाहता है। नाभि तथा उदर की त्रिवली से भगवान का शारीरिक सौंदर्य बढ़ जाता है। निर्विशेषवादी भगवान के सुंदर शरीर को कभी नहीं समझ पाएंगे, जिसका वर्णन शिव की स्तुति में यहां हुआ है। यद्यपि निर्विशेषवादी शिव जी की पूजा में संलग्न रहते हैं, किंतु शिव जी ने भगवान विष्णु के शारीरिक अंगों का जो अस्तमन किया है उसे वे समझने में असमर्थ रहते हैं। भगवान विष्णु को भागवतम 11:5-33 में शिव विरंचि नूतम कहा गया है, क्योंकि वे ब्रह्मा तथा शिव जी द्वारा पूजित हैं। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्जिनिमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भूतैर्महद्भियैमा पुरो विभो निर्मायसे ते यदमूस पुरुषम्। भुक्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकम् सोलं कृषिष्टं भगवन् वचांसि मे। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये, कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुवयेव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है, प्रत्येक दिन महत्वपूर्ण दिन होता है, भगवान कथा सुनते हैं, लेकिन आज श्यामानंद प्रभु का तिरुभाव तिथि है तो स्पेशल दिन है। तो कुछ समय हम लोग भगवान शिव के स्तुति पर विचार करेंगे और उसके बाद में भगवान श्यामानंद प्रभु के विषय में वार्ता करेंगे। तो कुछ समय से जो लोग आज संडे आए हैं उनके लिए बतला देना चाहूंगा। आप में से कितने लोग पीपल का पत्ता देखे हैं? जो लोग नहीं देखे उनके लिए मैं लाया हूं। देख रहे हैं ना पीपल का पत्ता, क्योंकि आज पीपल के पत्ते का वर्णन है, तो इसलिए मैं सुबह सुबह तोड़ा देखने के लिए कि भाई मैं भी देखा तो हूं, लेकिन इसका जो डिस्क्रिप्शन इसमें दिया गया इसे मिलता है कि नहीं, इसलिए मैं आज तोड़ करके लेकर के आया देखने के लिए। तो यहां पर भगवान शिव महाराज प्राचीन बरही के पुत्रों प्रचेताओं को उपदेश दे रहे हैं, और उन्हीं उपदेश के क्रम में भगवान शिव भगवान के चरणों में जो प्रार्थना किए हैं, ये प्रार्थनाएं साकार और निराकार दोनों का किए हैं। शुरू शुरू में भगवान के निराकार स्वरूप का यानी विश्व रूप का वर्णन किए हैं, इसे अहम सर्वस्व प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा वासवान। ये भगवान का एक रूप है, सब कुछ मुझ से निकला हुआ है। जब भगवान गीता में बतलाए कि कैसे सब कुछ निकला हुआ है, तो अर्जुन ने कहा ये तो कहने के लिए ठीक है, लेकिन प्रमाण क्या है, कैसे मैं समझूं कि सब कुछ आपसे निकला हुआ है। तो भगवान ने एक रूप दिखाया 11वें अध्याय में गीता के, जानते हैं उस रूप का नाम क्या है? विश्व रूप। तो विश्व रूप जब दिखाए भगवान तो अर्जुन डर गए। भगवान ने कहा क्यों डर गया? अरे तुम तो देखना चाहता था इस रूप को ना, मैं दिखाया तुमको। कहा नहीं नहीं ठीक है, अब हो गया, एनफ इज एनफ, अब आप अपने असली रूप में आ जाइए। तो वैसे ही भगवान के उसी रूप को भगवान शिव प्रार्थना किए, भगवान के विश्व रूप का प्रार्थना किए, अर्जुन भी उस रूप का प्रार्थना किए हैं, और देख करके अर्जुन घबरा गए और रिपेंट करने लगे, हाय हाय आप तो ऐसे हैं, मैं तो आपको अपना सखा समझता था, आपके साथ में खाता था पीता था, एक बिछावन पर हम लोग बैठते थे सोते थे, आप मुझे क्षमा कीजिएगा। तो वैसे ही भगवान शिव उन लोगों के लिए जो भगवान को नहीं समझ पाते हैं या भगवान के संबंध में उठपटांग बोलते हैं, उन लोगों को समझाने के लिए भगवान विश्वरूप का दर्शन कराए, और उन्हीं विश्वरूप का भगवान शिव प्रार्थना किए। अब जो भक्तों के लिए जो मनभावक हैं भगवान, अर्जुन को भगवान का विश्व रूप उतना अच्छा नहीं लगा, तो अर्जुन ने कहा कि नहीं नहीं ये रूप आप छिपा लीजिए, अपना असली रूप दिखाइए। वैसे ही भगवान शिव मानो खूब वर्णन किए विश्व रूप का, लेकिन उन्हें अच्छा नहीं लगा। तो अब श्लोक संख्या 45 से लेकर के श्लोक संख्या 52, सात श्लोकों में जय श्री श्री गौर निताय की जय, इन सात श्लोकों में भगवान के साकार स्वरूप का भगवान के सौंदर्य का वर्णन किए हैं। भगवान के सौंदर्य के एक एक वस्तुओं का वर्णन किए हैं। यहां पर गीता है, एक एक वस्तुओं का वर्णन किए हैं, यह प्रमाणित करता है। ऐसे विश्वरूप वाला जो श्लोक इसके पहले देखा जाए, भगवान श्री बड़े संक्षेप में उसका वर्णन कर दें, विश्वरूप का बहुत विश्वरूप है, लेकिन उसका उतना वर्णन नहीं किए। लेकिन सात श्लोकों में जो वर्णन किए हैं, ठीक यह प्रमाणित करता है कि भगवान शिव का भगवान कृष्ण में कितना निष्ठा है, कितना प्रेम है, कितने महान भक्त हैं। हो भी क्यों नहीं, भगवान शिव को वर्णन किया गया है वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ हैं भगवान शिव, महाजनों में एक महाजन हैं भगवान शिव, महाजनों जिन गतास बंधा, आज महाजन के द्वारा यह प्रार्थना किया जा रहा है, भगवान शिव के द्वारा यह प्रार्थना किया जा रहा है। और ये महाजन लोग ऑर्डिनरी नहीं है, जब भगवान का वर्णन करना होता है तो मन लगाकर वर्णन करते हैं, और मन लगाकर कोई किसी वस्तु का वर्णन तब करता है जब उस वस्तु के प्रति उसे प्रेम हो, स्नेह हो। जिस प्रकार से बाप मां हैं, उनके बच्चों के प्रति उनका स्नेह है, तो बच्चों के एक एक वस्तुओं का खूब अच्छी तरह से वर्णन करेंगे, तो यह प्रेम दिखलाता है, भक्ति दिखलाता है। जिस प्रकार से महाभारत में भगवत गीता के प्रारंभ में ही संजय का पांडवों के प्रति कितना प्रेम था, कौरव पक्ष में होने के बाद भी, महाराज धृतराष्ट्र के सारथी होने के बावजूद भी पांडवों के प्रति संजय का प्रगाढ़ प्रेम था। इसलिए जब वर्णन करने का समय आया तो संजय ने कह दिया कि जब दुर्योधन अधीर थे तो पितामह भीष्म ने शंख बजाया, बस हो गया। लेकिन जब पांडवों का वर्णन करना हुआ तो वे वर्णन करने में खोल खोल करके, किसने कौन शंख बजाया, पांचजन्य हृषिकेश देवदत्त धनंजय, नाम गिना गिना करके वर्णन कर रहे थे कि अर्जुन ने यह शंख बजाया, भीम ने यह शंख बजाया, युधिष्ठिर ने यह शंख बजाया, नकुल सहदेव ने यह शंख बजाया। तो यह प्रमाणित करता है कि पांडवों के प्रति संजय का प्रगाढ़ प्रेम था। ठीक उसी प्रकार से भगवान शिव का भगवान के चरणों में प्रगाढ़ प्रेम है, इसलिए भगवान के सौंदर्य का वर्णन कैसे कर रहे हैं इन सात श्लोकों में देखने को मिलता है। और उपमा दे करके वर्णन कर रहे हैं ताकि हम लोग भी समझ सके। प्रायः लोगों में निराकारवादिता जन्मजात होता है, भगवान निराकार हैं, बहुत लोग इसको स्वीकार करते हैं और मानते हैं, लेकिन भगवान साकार हैं, ये केवल बुद्धिमान लोग समझते हैं इस बात को। एक बार एक मायावादी मुझसे मिला था और वो कह रहा था कि भगवान निराकार हैं, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं, इसलिए शास्त्रों में भगवान के साकार का एक मूर्ति बना दिया गया ताकि हम लोग आइडेंटिफाई कर सकें, लेकिन वास्तव में भगवान निराकार हैं, निराकार से साकार उत्पन्न हुआ है, और इस प्रकार से वे कन्विंस करते हैं। लेकिन भक्त लोग सत्य को जानते हैं। यहां पर चलिए आप लोगों के लिए मैं उन सात श्लोकों में से छह श्लोकों का मैं पहले अनुवाद पढ़ लेता हूं ताकि आप लोग, ये ध्यान का विषय है, आप लोग ध्यान कीजिएगा। भगवान की सुंदरता वर्षाकालीन श्याम मेघों के समान है। स्निग्धन प्रावृष्ट घन श्यामम, भगवान के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। कोई गोरा होता है, काला होता है, तो भगवान कैसे हैं, श्याम वर्ण के हैं। क्लियर, भगवान का सौंदर्य जो है वह है भगवान श्याम वर्ण के हैं। कैसा श्याम वर्ण, कहते हैं वर्षाकालीन श्याम वर्ण के समान। उनके शारीरिक अंग वर्षा के जल के समान स्निग्ध है। निसंदेह वे समस्त सौंदर्य के समष्टि सार सर्वस्व हैं। हरे कृष्णा, बात मत करो माताजी। ये माताजी लोग समझती नहीं, कथा भी हो रहा है, बात करना हो तो करती रहेगी। भगवान के चार बाहु हैं, शुरू कर रहे हैं। सुंदर मुख हैं, और उनके नेत्र कमल दलों के तुल्य है। एक भगवान के सौंदर्य का वर्णन किए संक्षिप्त में कि भगवान श्यामले हैं, चतुर्भुज हैं। अब भगवान के सिर से अब वर्णन करना, सिख नख, सिख से नख तक वर्णन किए हैं इन श्लोकों में। कहते उनका नाक उन्नत है, उनकी हंसी मोहने वाली, उनका मस्तक सुंदर तथा उनके कान एक समान सुंदर और आभूषणों से सज्जित है। तो भगवान के मुखारबिंद का वर्णन किए श्लोक संख्या 45 और 46 में। अब भगवान के चितवन का, भगवान के मुखारबिंद से पांच बाण निकलते हैं, पुष्प बाणाय धीमहि। और ये पांच बाण जो होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं, जिनमें ये पांच में से एक भी बाण लग जाता है वो विदित हो जाता है। और उन पांचों बाणों का यहां पर वर्णन कर रहे हैं। भगवान अपने मुक्त तथा प्रीति पूर्वक हास्य तथा भक्तों पर तिरछी चितवन के कारण अनुपम सुंदर लगते हैं। भगवान का चितवन एक बाण है, भगवान का हास्य एक बाण है, भगवान का पलक एक बाण है, भगवान का कपोल एक बाण है और भगवान की वाणी। उनके बाल काले तथा घुंघराले हैं, हवा में उड़ता उनका वस्त्र कमल के फूलों से भी, कमल के फूलों में से उड़ते हुए केसर के समान प्रतीत होता है। उनके झलमलाते कुंडल, चमचमाता मुकुट, कंकण, वनमाला, नुपुर, करधनी तथा अन्य शरीर के आभूषण, शंख, चक्र, गदा तथा कमल पुष्प से मिलकर उनके वक्षस्थल पर पड़ी कौस्तुभ मणि कि प्राकृतिक शोभा को बढ़ाने वाला है। देखिए यहां भगवान का वर्णन हो रहा है, लेकिन भगवान शिव भगवान का वर्णन तो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ भगवान के आभूषणों का भी वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि ये आभूषण भगवान से जुड़े हुए हैं। तो जो भगवान से जुड़ जाता है उसका मूल्य बढ़ जाता है, उसका स्टॉक ऊपर चला जाता है, वो बहुमूल्य हो जाता है। भगवान तो बहुमूल्य हैं ही, लेकिन भगवान से संबंध होने के चलते ये वस्तुएं भी, एक कुंडल, कुंडल का वर्णन हो रहा है, कितना सौभाग्य है कुंडल का जो भगवान के कानों में लगा हुआ है, भगवान का मुकुट, इन सब का वर्णन हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से भगवान के भक्त, ये सब भगवान से संबंधित हैं, इसलिए ये पूजनीय हैं, इस भगवान से संबंध रखते हैं। तो भगवान शिव इनडायरेक्टली यह बतला रहे हैं कि ये सब सेवक हैं, भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। तो भगवान के सेवकों का भी उतना ही मान है जितना भगवान का है। शास्त्र कहता है साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रै उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्वी। उक्तस्त, शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया गया है, जो गुरु है वो कैसा है, हरित्वेन, जो हरि का गुण है वैसा ही गुण गुरु में है। गुरु हरि नहीं है लेकिन हरि के समान है, क्योंकि हरि से जुड़ा हुआ है। ठीक वैसे ही ये वस्तुएं भगवान से जुड़े। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो रसोईया है, यदि अपने राजा के लिए, मालिक के लिए भोजन बनाता है, जब तक से वह समझता है कि मालिक के लिए भोजन बना रहा हूं, तो वह अभी वही खा सकता है जो मालिक खाता है, लेकिन जे ही तुम्हें, अरे मैं बना रहा हूं पहले मैं खाऊंगा, तो मालिक कहेगा बाहर जाओ। चूंकि उसका मालिक से संबंध है, इसीलिए उसे वही प्राप्त होता है जो मालिक को प्राप्त है। इन वस्तुओं का संबंध भगवान से है, इसलिए महाभागवत भगवान शिव भी इनका गुणगान कर रहे हैं। इन वस्तुओं से भगवान का सौंदर्य नहीं बढ़ रहा है, भगवान के लगता है कि भगवान का यहां वर्णन कर रहे हैं कि उनके काले बाल तथा घुंघराले हैं, तो हवा में उड़ता चौके, उनके झलमलाते कुंडल, चमकता मुकुट, कंकड़, वनमाला, नुपुर, करधनिता, अन्य शरीर के आभूषण, ये भगवान के सौंदर्य को नहीं बढ़ा रहे हैं, बल्कि भगवान के सौंदर्य से इनका सौंदर्य बढ़ रहा है। न कि भगवान के कान में कुंडल है इसलिए भगवान का कान सुंदर लग रहा है, कुंडल से भगवान का कान सुंदर नहीं लग रहा है, लेकिन भगवान का कान से कुंडल सुंदर लग रहा है। तो यहां पर प्रतीत होता है कि भगवान के सौंदर्य का वर्णन तो इन वस्तुओं से किया गया है। भगवान अब यहां तक वर्णन हो गया, केस तक, अब भगवान के कंधों का वर्णन कर रहे हैं 49 में। भगवान के कंधे सिंह के समान हैं, इन पर मालाएं, हार एवं घुंघराले बाल पड़े हैं जो सदैव चमचमाते रहते हैं। इनके अतिरिक्त कौस्तुभ मणि की सुंदरता है, ये वक्षस्थल का, और भगवान के श्याम वक्षस्थल पर श्रीवत्स की रेखाएं हैं जो लक्ष्मी के प्रतीक हैं। यानी आप थोड़ा पेट अंदर लो, ये हड्डी एक है ना, ऋण की, क्या बोलते, कौन हड्डी बोलते हैं इसको, ऋण का पसली, पसली है, हड्डी पसली तोड़ दूंगा है, ये पसली, तो ये पसली तक वर्णन कर दिए, ये पसली तक, श्लोक संख्या 49 में। इन सुवर्ण का चमक स्वर्ण कठौती से बनी हुई सुवर्ण लकीरों को मात करने वाली है। जो आज का श्लोक है भगवान के पेट का, इसमें कोई हड्डी नहीं है, है? इस पेट का वर्णन कर रहे हैं, और इसके बाद का जहां से हड्डी शुरू होता है उसका वर्णन करेंगे। तो दो हड्डियों के बीच में पेट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है शरीर का, बड़ा इंपॉर्टेंट है, है? यदि पेट ठीक से न रहे, खैर इसका श्लोक का वर्णन बाद में करूंगा, पेट का बाद में, सब लोग जानते हैं उसका वर्णन, लेकिन आगे वाला मैं जो श्लोक, दो और श्लोक है उसका मैं पढ़ लेता हूं, भक्त लोग वर्णन करेंगे। भगवान की कटी का अधो भाग श्यामल रंग का है, कटी प्रदेश का वर्णन कर रहे हैं, और पीताम्बर से ढका हुआ है। भगवान पीताम्बर धारण करते हैं तो करधनी से नीचे, हम लोग धोती धारण किए, भगवान पीताम्बर धोती धारण करते हैं, ढका हुआ है। उनमें सुनहली जरीदार करधनी है, भगवान करधनी धारण किए हैं। उनके एक समान चरण कमल तथा पिंडलियां, कफ मसल, भगवान घुटना का, जांघे तथा घुटने अनुपम सुंदर। तो भगवान के पहले वस्त्र का वर्णन किए, कटी प्रदेश का वर्णन किए, अब जांग का वर्णन किए, घुटना का वर्णन किए, कफ मसल का वर्णन किए। निस्संदेह संपूर्ण शरीर अत्यंत सुडौल प्रतीत होता है, वेल बिल्ड बॉडी विदाउट गोइंग इन जिम। अब भगवान के चरण कमलों का, कफ मसल से नीचे का वर्णन करते हैं श्लोक संख्या 52 में। हे भगवान, आपके दोनों चरण कमल इतने सुंदर हैं मानो शरद ऋतु के उगने वाले कमल पुष्प के दो खिलते हुए दल हैं, चरण कमल, कमल। आपके चरण कमलों के नाखून से इतना तेज निकलता है, चरण कमल का, और कमलों से नीचे, चरण कमल से नीचे कहां गए, नाखून पर, वो अंतिम चीज है नाखून। कहते हैं इतना तेज निकलता है कि वह बद्ध जीव के हृदय के सारे अंधकार को तुरंत छिन्न कर देता है। हे स्वामी, मुझे आप अपना वह स्वरूप दिखलाएं जो भक्त के हृदय अंधकार को नष्ट कर देता है। हे भगवान, आप सबों के परम गुरु हैं, अतः आप जैसे गुरु के द्वारा अज्ञान के अंधकार से आवृत सारे बद्ध जीव प्रकाश प्राप्त कर सके। तो इस प्रकार से भगवान शिव नख सिख शुरू किए सिर से और कहां आए, नख तक वर्णन कर लिए। आज का श्लोक है, इस श्लोक में भगवान के पेट का वर्णन किया गया है। कितने लोगों के पास पेट है, थोड़ा हाथ उठाओ तो। सबके पास, जो सो रहे हैं तो उतने ही हाथ उठाएंगे, जगह हैं तो हाथ उठाएंगे। तो कितने लोग सो रहे हैं, कोई हाथ नहीं उठाया। सबके पास पेट है ना, आधा घंटे के बाद पेट पूजा होने है। सबके पास पेट है। पेट देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ये जितने जो कुछ भी खाते पीते हैं सब पेट में डालते हैं, यही ना, पेट में डालते हैं। और पेट से ही रक्त संचार होता है। जो हमारे शरीर में 10 प्रकार के वायु हैं, उसमें से 5 इंपॉर्टेंट जो वायु हैं, उदान, प्राण, समान, आपान और ब्यान, ये सब इसी प्रदेश में रहते हैं, यहीं तक रहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए उदान वायु, उदान वायु का हम जब खाते हैं तो वो खाना को अलग करना, द्रव्य को अलग करना, किसी को याद है फोर्थ कैंडो में इसका वर्णन है, मैं बहुत दिन पहले पढ़ा था। आज उदान दबाता है कि अपान दबाता है, दोनों में से एक है जो दबाता है। जैसे तमाल जी आपको याद है, अपान दबाता है ना, जो खाते हैं तो उसको दबाना। या हम लोग अपने मां के गर्भ से आए तो कौन बाहर निकाला, वह जो वायु था उसका नाम था अपान। उदान का काम है, सब कुछ तो साथ में खाते हैं, लेकिन यहां से ठोस पदार्थ को अलग करना और तरल पदार्थ को अलग करना। प्राण जो वायु है वो हृदय में निवास करता है। उदान वायु यहां पर कंठ में निवास करता है, जो प्राण वायु हृदय में निवास करता है, और समान वायु जो है वो पेट में निवास करता है। समान का मतलब होता है बराबर, नाभि में मुख्य कहा जाता है जो निवास करता है। और समान वायु से रक्त संचार का काम होता है। किसको कितना रक्त चाहिए ये समान वायु देता है। हार्ट में भी कितना रक्त चाहिए वो समान वायु देता है। पैर में कितना रक्त चाहिए, सिर में कितना रक्त चाहिए, ये सब समान वायु का काम है। और यह निवास करता है पेट में। इसीलिए कहा गया है कि पेट बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। पेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। पेट यदि ठीक रहे, कहते हैं पेट आज साफ हो गया, पेट साफ हो गया तो ठीक है, यदि कॉन्स्टिपेशन है तो गड़बड़ हो गया है। कहते हैं पेट साफ ना हो तो बीमारियां उत्पन्न होती हैं। गांव में मोटा, मैं एक बार कहा हूं, वो मोटा मोटी कहावत है ना, कहते हैं कि पैर गरम पेट नरम, सिर को रखो ठंडा, इस पर भी यदि वैद्य आए तो उसको मारो डंडा। यानी पेट नरम रहेगा, पेट जब ठीक ठाक रहेगा तो डॉक्टर फिर दवा लेने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। तो पेट नरम, तो पेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। भगवान शिवाजीव गोस्वामी पेट का उपमा दिए हैं सृष्टि, स्थिति और प्रलय तीनों से। इसी श्लोक में यहां पर पूरक और रेचक दो प्रकार के वायु का यहां पर प्राणायाम में तीन चीज होता है, पूरक, रेचक और कुंभक। पूरक का मतलब होता है श्वास लेना, रेचक का मतलब होता है श्वास छोड़ना, और कुंभक का मतलब होता है श्वास को रोकना। इसी को श्रीपाल जी गोस्वामी कहते हैं सृष्टि, प्रलय और स्थिति। भगवान जब सांस छोड़ते हैं तब क्या होता है, सृष्टि होता है। और पूरक जब भगवान सांस लेते हैं तो प्रलय होता है। यहां पर पूरक रेचक कहा गया है, इसके बीच में कुंभक एक है जिसका यहां पर वो मात्रा नहीं बैठ रहा है, इसलिए इसको छोड़ दिया गया है। लेकिन समझना चाहिए, आचार्य समझ सकते हैं कि यहां पर कुंभक छोड़ दिया गया है। सृष्टि और प्रलय लेकिन शिवाजी गोस्वामी क्लियर किए हैं कि कुंभक यानी स्थिति, ये तीनों होता है भगवान के सांस प्रश्वास से। जब भगवान श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, और यह सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया सदैव चलती रहती है। जैसे आप लोग देखो, हवा बहे या हवा न बहे, पीपल के पत्ते हमेशा हिलते रहते हैं, और जितने पत्ते हैं जब हवा बहेगा तब हिलेगा, और हवा नहीं बहेगा तो शांत रहेगा। लेकिन पीपल के पत्ते को आप लोग देखना, हवा बहे या अपने में मग्न रहते, जब जो हवा बहेगा तो जोर से बहेंगे, लेकिन अदरवाइज शांत रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो एक आचार्य ने बलगंती चलंती दलानी तत्पात्राणी अस्य सह बलगत दल अस्वस्थ कहते हैं। यहां पर बलगंती का मतलब होता है सुंदर लगना, लेकिन आचार्य कहते हैं बलगंती चलंती, बलगंती का मतलब चलायमान। तो पीपल का जो पत्ता होता है वो कैसा होता है, घूमता रहता है, चलामया रहता है। तो भगवान अपने सांस प्रश्वास से, ये तो एक सृष्टि है, ऐसे अनेक सृष्टि है, प्रत्येक दिन सृष्टि होता है और प्रलय होता है। इसीलिए यहां पर पूरक और रोचक कल दो ही का वर्णन किया गया है, और कुंभक है स्थिति है हम लोग का प्रलय, हम लोगों का सृष्टि हुआ है, हम लोग देह ग्रहण किए हैं, हमारे काउंटिंग के अनुसार कुछ दिन तक हम रहने वाले हैं। लेकिन यदि हम मच्छर का काउंटिंग करें कुंभक के रूप में, स्थिति रखा जाए अपने अनुसार, तो कितना दिन उसका जीवन अवधि है। उसका भी ठीक ऐसे ही सृष्टि होता है और उसका भी प्रलय होता है, लेकिन स्थिति कितनी है, बहुत कम है, नगण्य है हमारे तुलना में, हम लोगों के जीवन अवधि में। वैसे ही हम लोगों के जीवन की अवधि या जो स्थिति है देवताओं की गणना में बहुत कम है, और देवताओं की गणना जहां पर समय नहीं है, न तद्भासयति सूर्यो न सांको न पावक यद गतमान निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, उसी गणना में वहां पर है ही नहीं है। तो प्रत्येक दिन सृष्टि होता है और प्रत्येक दिन प्रलय होता है, प्रत्येक दिन। तो यह पूरक औरेचक संविघ्न, यहां पर अनुवाद किया गया है चलायमान, हां संविघ्न, अंग्रेजी में क्या है, एजिटेटेड, ओके। तो बलगंती चलंती जलानी पत्राण यश स बलगदल अस्वस्थ, ये अस्वस्थ जो है पीपल, जो है पीपल का जो दल है पत्ता है वह कैसा है, बलगंती चलंती, हमेशा चलाय मार रहता है। संविघ्न यहां पर कहा गया है चलायमान, यानी भगवान जब सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। आप लोग कितने लोग हैं जो अपने दादाजी के पेट पर बचपन में बैठे थे, है कोई? शहर वाले नहीं जानते हैं, गांव वाले जानते होंगे, हैं? देखो नेपाल में करते हैं ऐसा। हम लोग छोटे बच्चे थे तो दादाजी के पेट पर पड़ जाते थे, देखो अब मैं तुम्हें चला रहा हूं, ऊपर नीचे, एक तरह से श्रावण का महीना झूला झूलने का है, तो पेट पर झूला झूलते थे दादाजी के पेट पर। और यदि बंबई शहर वाले दादाजी हो या बड़ा पेट वाला हो तो उनका झूला कहीं ज्यादा होगा, गांव वाले दादाजी का पेट छोटा होता है, थोड़ा झूला होता है। तो भगवान यहां पर भगवान शिव वर्णन कर रहे हैं कि जब भगवान सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो ऊपर नीचे जब होता है तो उस ऊपर नीचे होने की क्रिया को भगवान यहां पर शिव कहते हैं बलगु, बड़ा सुंदर लगता है। जैसे हम जैसे छोटे बच्चों को बड़ा सुंदर लगता है दादाजी का पेट, हम बैठे हैं तब सुंदर लगता है, भगवान शिव भी बैठ करके देख रहे हैं, कहते हैं बलगु दल उदरम, और बलि बलगु, बलि बलगु, बलगु का मतलब कुछ रेखाएं हैं। जैसे एक बड़ा सुंदर सटीक उपमा दिया गया है, पीपल के पत्ते का उपमा दिया गया है। कितना सुंदर उपमा सुखदेव गोस्वामी खोजे हैं। कोई उपमा कैसे खोज सकता है कि जो हमेशा चलायमान हो, चलता हो और उस पर रेखाएं हो। तो आप जितना भी पत्ता देखो, किसी में रेखा होगा तो चलायमान नहीं होगा, और जो चलायमान होगा तो रेखा नहीं होगा। लेकिन रेखा और चलायमान दोनों हो, और वह कौन है? वह है अस्वस्थ दलह, यानी पीपल का यह पत्ता। वास्तव में देखने के लिए तोड़ करके लाया। देखिए इस पर कितना रेखाएं हैं, देख रहे हैं ना रेखाएं, देख रहे हैं रेखाएं। और ये पीपल का पत्ता ऐसे होता है, यदि अपने पेट को आप लोग देखेंगे तो ऐसे ही होगा। ये नाड़ी प्रवेश में आएगा, और ये ऊपर का जो है ये क्या कहते हैं, पसली, पसली है? पसली के बीच में जो होता है ना ये जगह, यह उसमें फिट होता है ऐसे। ठीक पीपल के पत्ते के आकार का हमारा पेट है हम लोगों का। ये बना हुआ है भगवान का सैंपल है, भगवान के पेट का सैंपल है, वहां से प्राप्त हुआ है। तो कहते हैं इस प्रकार, तो भगवान के पेट का वर्णन किए, बड़ा ही शोभायमान यह पेट है। श्रीपाद जी गोस्वामी कहते हैं पेट के द्वारा ही भगवान सृष्टि स्थिति और प्रलय तीनों करते हैं। यहां पर केवल सृष्टि और स्थिति का वर्णन किया गया है। अब भगवान के नाभि का वर्णन किया गया है नीचे के श्लोक में, कहते हैं प्रतिसंक्राय मयम विश्वम नाभ्या आवर्त गभीरया, नाभि के गहराई का। कहते हैं नाभि इतना गभीर है। देखिए नाभि है जिससे हम लोगों का नाभि संबंध स्थापित करता है। हम लोगों का जो संबंध है, हम लोग अपने मां के गर्भ से जब बाहर आए तो हम लोगों का संबंध जो था वो नाभि से जुड़ा हुआ था, राइट? कहते हैं नाभि काट, अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको, कौन उस, नहीं उसे जो काटते हैं कौन कोड, अम्पलिकल कोड है, जानते हैं ना, वो काटते हैं तो वो बंधा होता है। तो हम लोगों का संबंध है भगवान से, इसी क्या है अम्बलिक कोड से हम लोग भी बंधे हुए हैं, जो भी आप समझ रहे हो अंग्रेजी में, उसी कोड से हम लोग बंधे हुए हैं। हम लोग जाना भी चाहे तो कहीं जा नहीं सकते हैं, क्योंकि बंधे हुए हैं, वहां से कोई छुटकारा नहीं है। और वह नाभि इतना गहरा है, यहां पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि असंपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के नाभि से निकले कमल दल से उत्पन्न हुआ है। उस नाभि से एक कमल दल निकला जिस पर ब्रह्मा जी निकले, और ब्रह्मा जी से पूरे विश्व ब्रह्मांड का उत्पत्ति हुआ है। और वह नाभि इतना गहरा है, वह नाभि जो है वो कारणोदक शाही का नाभि है, नहीं गर्भोदक शाही का नाभि है, यहां से ब्रह्मा जी निकलते हैं। और वहां पर सृष्टि के अवयव हैं, हम लोग वहीं से निकले हुए हैं। तो मुख्य करके इस श्लोक में भगवान के पेट का और भगवान के नाभि का वर्णन किया गया है, उनके सौंदर्य का। पेट के सौंदर्य का वर्णन किया गया है क्योंकि हमेशा ऊपर नीचे होता है, भांति के समान, और उसमें रेखाएं हैं। नाभि बहुत गहरा है, यानी बहुत समान उसमें रखा गया था, वहां से बाहर निकाला गया है, सृष्टि उससे निकली हुई है, तो नाभि का वर्णन किया गया है। तो संक्षिप्त में मैं इसको यहीं पर छोड़ता हूं, और इसी में पीपल का पत्ता भी रखता हूं, कल तक के लिए रहेगा। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी तात्पर्य में यही बताएं कैसे ब्रह्मा शिवादि भगवान के इस सौंदर्य का वर्णन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। अब आज श्यामानंद प्रभु का तिरुभाव तिथि है, तो हम लोग थोड़ा श्यामानंद प्रभु के विषय में कुछ सुनेंगे। मैं आज पुस्तक ढूंढ रहा था, पुस्तक नहीं मिला, पता नहीं। तो श्यामानंद प्रभु सिनाथ प्रभु बोलते हैं हाईटेक है, काम करता है, यूटिलिटीज आवर प्रिंसिपल, सब कुछ भगवान से हम लगा सकते हैं। गौरांगेर संगी जाने नित्य सिद्ध करी माने, जे जाने ब्रजेंद्र सूत पाए। तो जो लोग भगवान चैतन्य महाप्रभु के एसोसिएट हैं, दोज हु नो द एसोसिएट ऑफ श्री गौरांग टू बी इटर्नली लिबरेटेड सोल विल अटेन देयर प्लेस बाय द साइड ऑफ द सन ऑफ द किंग ऑफ ब्रज। श्यामानंद प्रभु, श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर, ये तीन ऐसे महान वैष्णव हुए हैं जो भगवान चैतन्य महाप्रभु को शाश्वत पार्षद हैं। ये लोग इस धराधाम पर आए थे, भगवान चैतन्य महाप्रभु के चले जाने के बाद ये लोग आए भगवान चैतन्य महाप्रभु के ग्लोरी को, उनके जस को फैलाने के लिए। श्यामानंद प्रभु का आविर्भाव उत्कल आज उड़ीसा का आता है। उड़ीसा के धरेंद्र बहादुर नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम था कृष्ण मंडल और उनके माताजी का नाम था दुरिका। कृष्ण मंडल षड गोपाज जाति के थे, उन्हें बहुत पुत्र और पुत्रियां जन्म लिए लेकिन कोई बचा नहीं, जन्म से पहले ही घर में ही वे मर गए। श्यामानंद प्रभु अपने मां बाप के अनुल्लास संतान थे, अंतिम संतान थे, उसके बाद कोई संतान, यानी वो जन्म लिए, अन्य जितने संतान थे वे गर्भ में ही मर गए, यही एक थे जो गर्भ से बाहर आए, जन्म लिए, तो इसलिए उनका नाम रखा गया दुखिया। गांव में बच्चों को जिलाने के लिए कुछ अलग अलग नाम रख देते हैं, ऐसा नाम रखते हैं, कोई अट्रैक्टिव नाम नहीं रखते हैं, अनअट्रैक्टिव नाम रखते हैं, पता है ना, गांव में अलग नाम रखते हैं, तो उनका नाम रख दिए दुखिया। सब लोग कहते थे कि यह बालक कोई सामान्य बालक नहीं है, यह जरूर ही एक महान बालक है, बचपन से ही, जन्म से ही उनमें एक महापुरुष के लक्षण दिखाई पड़ते थे। भगवान जगन्नाथ की कृपा से इनका आविर्भाव हुआ था। भगवान जगन्नाथ स्वयं इनको लाए थे अपना गुणगान कराने के लिए, भगवान चैतन्य महाप्रभु के जस को गान कराने के लिए। वे कामदेव के समान देखने में लगते थे। कालांतर में उनका जात संस्कार, जन्म संस्कार, चूड़ामणि संस्कार, ये सब हुआ। बचपन से ही श्यामानंद प्रभु कुशाग्र बुद्धि के थे, जो भी एक बार पढ़ते या सुनते थे वे तुरंत याद कर लेते थे। वे अपने कम ही समय में ग्रामर, पोएट्री, ये सब सीख गए। बचपन में ही वे भगवान चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के विषय में अपने गांव में ही कुछ लोगों से सुने, और सुनते ही भगवान चैतन्य महाप्रभु गौर नित्यानंद के चरणों में उन्हें अटैचमेंट डेवलप हुआ। कृष्ण मंडल, उनके पिताजी भी एक बहुत महान भक्त थे, जब उन्होंने देखा कि उनके बेटे में भगवान चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के चरणों में प्रगाढ़ प्रेम है, तो उन्होंने अपने बेटे श्यामानंद से, दुखिया से कहा कि तुम दीक्षा ग्रहण करो और नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु का तुम सेवा करो। एक ही संतान, कोई संतान नहीं था। आप देख सकते हैं कृष्ण मंडल जी का वैष्णवता। आजकल हमारे कांग्रीगेशन डिवोटी हैं, 5-6 लड़के हैं और बोलो कि एक लड़का दे दो हमको, चलना है थोड़ा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, तो हजार बहाना हो जाए ना जाओ। कितने बच्चे आपके हैं? तो आपसे क्या मांगू? और कोई है जिसके पास 5-6 लड़के हैं? कितने लोग हैं 5-6 लड़के हैं? तो हाथ उठाओ। तो वो कोई हाथ भी नहीं उठा रहा है डर से कि मांग लेंगे है? देखो एक को बोलते हैं जबरदस्ती तो हाथ उठाओ, कर हाथ क्यों उठाऊंगा मैं है? नहीं देते हैं। और देखिए कृष्ण मंडल को, जिनके 5-6 संतान मर गए थे, जन्म भी नहीं लिए थे, ये अंतिम संतान जन्म लिए थे, और जब देखा कि इसकी आसक्ति है कृष्ण में, तो कहा तुम दीक्षा ले लो। आजकल के बाप मां देखेंगे कि हरे कृष्ण तरफ जा रहा है तो कुछ उल्टा शुरू करेंगे। कल ही परसों हम लोग असीम कृष्ण प्रभु पढ़ रहे थे, दधी चिड़ा फेस्टिवल रघुनाथ गोस्वामी का है, उनके बाप मां देखेंगे तो नित्यानंद प्रभु चेतन महाप्रभु का भगत बन जाएगा। तो क्या क्या नहीं किए, बांध करके हाथ पर बांध कर रखते थे, विवाह कराए, क्या क्या नहीं किए। लेकिन जो एक बार चैतन्य महाप्रभु के शरण में आ जाता है, उनको याद करता है, महाप्रभु से आत्मसात करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो उसे कोई बांध नहीं सकता। रघुनाथ दास गोस्वामी के माता पिता कहे कि इसके पास इंद्र के समान सौंदर्य और अप्सरा के समान पत्नी है, जब ये दोनों नहीं बांध सकते हैं, संसार में दो ही वस्तुएं हैं बांधने का, कंचन और कामनी। जब ये कंचन और कामनी इसे नहीं बांध सकते हैं तो कौन बांध सकता है। तो उसी प्रकार से श्यामानंद प्रभु के पिताजी सहर्ष कहे कि आप जाओ और दीक्षा लो। उन्होंने पिताजी से कहा कि मैंने गुरु स्वीकार कर लिया, मैं गुरु चुन लिया हूं, और मेरे गुरु हैं हृदय चैतन्य प्रभु जो कि अंबिका कालना में हैं, और उनके गुरु हैं गौरीदास पंडित। आप लोग जितने लोग गौरमंडल परिक्रमा में गए होंगे, देखे होंगे अंबिका कालना में भगवान चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु सदैव वहां पर निवास करते हैं, गौरीदास पंडित के पास, उनके घर पर। तो उन्होंने कहा अपने पिताजी से कि यदि आप परमिशन देंगे तो मैं वहां पर जाऊंगा और उनसे अपना दीक्षा ग्रहण करूंगा। तो उनके पिता ने कहा कि दुखिया, लेकिन तुम कैसे जाओगे यहां से? उड़ीसा से बंगाल जाना है, कैसे जाओगे? उसका चिंता मत कीजिए, उड़ीसा से बहुत लोग बंगाल जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए है? तो जो गंगा स्नान करने जब लोग जाएंगे तो मैं चला जाऊंगा गंगा स्नान करने साथ में। पहले गंगा स्नान बड़ा चीज था, लोग जाते थे टीम बना करके, झुंड के झुंड लोग हरिद्वार काशी प्रयाग गंगा स्नान करने, और बड़ा महत्व था गंगा स्नान करने का है? तो उस समय उड़ीसा से लोग गंगा स्नान करने नवद्वीप आया करते थे। गंगा स्नान कहीं कर सकते थे, लेकिन लोग काशी जाते हैं, नवद्वीप जाते हैं, प्रयाग जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, बद्रिकाश्रम जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि बहुत लोग जाते हैं गंगा स्नान करने, उन लोगों के साथ में चला जाऊंगा। और दुखिया ने वैसे ही किया, और कालांतर में वे आए। जब वे आए तो अपने नवद्वीप आए, शांतिपुर भ्रमण किए, और फाइनली अंबिका कालना आए, जहां पर गुरु के आश्रम में आए तो सष्टांग दंडवत कर रहे थे, और उस समय हृदय चैतन्य प्रभु वहां से निकल रहे थे। वे जब इस दुखिया को देखे तो उन्होंने उसे पूछा कि तुम कौन हो? तो दुखिया ने कहा कि मैं आपके चरणों का एक सेवक हूं, मैं धरेंद्र बहादुरपुर उड़ीसा के षडगोप जाति का एक बालक हूं, मेरे पिता का नाम श्री कृष्ण मंडल है और मेरा नाम दुखिया है। हृदय चैतन्य प्रभु यह सुनकर के, उसके मुख से तोतली मीठा वचन सुनकर के बड़े खुश थे, और उन्हें कहा कि आज से तुम्हारा नाम रहेगा कृष्णदास। दुखिया नाम से बदल दिए कृष्णदास। और उन्होंने कहा कि आज सुबह से ही मैं सोच रहा था कि जरूर कोई न कोई आज आने वाला है, महाप्रभु किसी को भेजने वाले हैं, तो तुम आए हो। इस प्रकार से कृष्णदास, जिनका नाम दुखिया था, वो कृष्णदास हो गया, बड़े भगवत भक्ति के साथ में अपने गुरु का सेवा करने लगे और कालांतर में वे उनसे दीक्षा ग्रहण किए। वे अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के थे और गुरु और कृष्ण के प्रति उनकी प्रगाढ़ निष्ठा थी, इसलिए उनके गुरुदेव ने कहा कि फर्दर स्टडी के लिए आप वृंदावन जाओ और श्रीपाद जीव गोस्वामी के संरक्षण में रह करके आप शिक्षा ग्रहण किया करना। और गुरु का आज्ञा पा करके वे वहां से चले, होते होते बंगाल से गया आए, विष्णुपाद का दर्शन किए जहां भगवान चैतन्य महाप्रभु ईश्वर पुरुष से दीक्षा ग्रहण किए थे। उसके बाद काशी आए, वहां पर ईशान और तपन मिश्रा का उन्हें दर्शन हुआ, तपन मित्रा और चंद्रशेखर का दर्शन हुआ, और जहां चैतन्य महाप्रभु से सनातन गोस्वामी शिक्षा ग्रहण किए थे उसका दर्शन किए। बाद में प्रयाग होते हुए मथुरा पहुंचे, विश्राम घाट पर जाकर के जमुना जी में स्नान कर करके आदि केशव का दर्शन किए और जन्मस्थली पर खूब धूली में, पहले कंक्रीट जंगल नहीं था, पहले डस्ट था, ब्रजरज था, उसमें स्नान किए और उसके बाद वृंदावन के लिए वे प्रस्थान किए। वृंदावन जाकर के वे श्रीपाद जीव गोस्वामी से मिले, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किए और अपने गुरुदेव का आज्ञा सुनाए। गुरुदेव है कमिटेड मी टू योर चार्ज, हिज पटिशन टू योर डिवाइन ग्रेस इज आई एम इंटरेस्टिंग दुखिया कृष्णदास टू योर केयर, प्लीज फुलफिल हिज माइंड्स डिजायर एंड सेंड हिम बैक टू मी आफ्टर सम टाइम। जैसे हम लोग कभी कभी भक्तों को पुणे भेजते हैं ट्रेनिंग के लिए, जब राय श्याम प्रभु ट्रेनिंग देंगे बाद में आ जाना, और उनसे कहते हैं ट्रेनिंग देके भेज देना यहां पर। तो वैसे ही मानो हृदय चैतन्य प्रभु ने जीव गोस्वामी से अपील किया कि मैं अपने शिष्य को भेज रहा हूं और ट्रेनिंग देने के बाद आप उसे भेज देना। तो इस प्रकार से वे जीव गोस्वामी बड़े खुश हुए, उन्हें स्वीकार किए। और उसी समय दो और वैष्णव वहां पर आए, श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर। ये जो त्रिकोणीय मिलाप था, ये जो संगम था, जहां पर नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद प्रभु, ये तीनों का संगम जो था, ये समझ लीजिए कि चेतन महाप्रभु के बाद यही लोग थे। रूप सनातन आदि ने तो ग्रंथों का रचना किया, लेकिन एक प्रचारक थे, इन लोगों ने, तीनों ने प्रचार किया। तीन लोग अलग अलग जाकर के, नरोत्तम दास ठाकुर मणिपुर आसाम इत्यादि में प्रचार किए जाकर के। आज भी आसाम में मैं गया था कुछ समय पहले, वहां पर गांव के गांव में नाम संकीर्तन, मंदिर नहीं बनाते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर कुछ शिष्य लोग हैं जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं, कहते हैं कलयुग में नाम संकीर्तन है, मंदिर मनाते हैं उसमें भागवत रखते हैं, भागवत का पूजा करते हैं और नाम संकीर्तन करते हैं। तो श्रीजीव प्रभु हमको बुलाए थे, एक मंडल था जहां पर करीब 3-4 लाख लोग आए थे, नाम करने वाले, कीर्तन करना, अखंड एक महीने तक नाम कीर्तन हो रहा था और प्रत्येक दिन अलग अलग सोसाइटी से लोग आते थे नाम के ऊपर बोलने के लिए। तो दीन बंधु प्रभु थे, मैं था, और लाखों लोग बैठ करके पिन ड्रॉप साइलेंट नाम का महिमा सुन रहे थे। तो नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य प्रचार किए बंगाल में और श्यामानंद प्रभु उड़ीसा में प्रचार किए। इस प्रकार से लोग प्रचार किए। इन्हें समय बीतते जा रहा है, आप लोग इसको डिटेल में पढ़ना। श्यामानंद प्रभु जीव गोस्वामी से कहे कि मेरे लिए क्या सेवा है, जो भी वैष्णव रहना चाहता है, जो ब्रह्मचारी रहना चाहता है, वैष्णव रहना चाहता है, उसको अपने आप इंगेज करना चाहिए। यदि इंगेजमेंट नहीं होगी, यदि हमारी सेवा नहीं होगी, तो हम वैष्णव नहीं बन सकते हैं। हम लोग ब्रह्मचारी नहीं रह सकते हैं. वी हैव टू फाइंड आवर ओन एंगेजमेंट. यदि नहीं होता है तो सीनियर वैष्णव से पूछें कि मैं क्या सेवा करूं. सेवा यदि नहीं है तो डेवल माइंड इज ना एम्प्टी माइंड इज डेवल वर्कशॉप. फिर हम प्लानिंग करेंगे, पॉलिटिक्स करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, क्या क्या, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, वो ये किया, वो उसने ये किया, हजार चीज सोचेंगे. लेकिन जब सेवा में लगे रहेंगे तो मन के पास सोचने के लिए ये नहीं है. तो हमारे आचार्य गण इसको जानते थे, इसलिए श्यामानंद प्रभु ने स्वयं जीव गोस्वामी से पूछा कि मेरे लिए सेवा क्या है, मैं क्या सेवा करूं. तो उन्होंने कहा कि तुम जाओ और सेवा कुंड में डेली झाड़ू लगाना. तो श्यामानंद प्रभु का सेवा था सेवा कुंड में जाकर के झाड़ू लगाना. तो वे सेवा कुंज में गए झाड़ू लगाने के लिए. प्रत्येक दिन वे झाड़ू लगाते थे सेवा कुंज में जाकर के. एक फंक्शन है और वहां मुझे लोग चीफ गेस्ट बुलाए हैं. मैं नहा कर जाऊं, ऐसे ही जाऊं सोच रहा हूं. समय बीतते जा रहा है, यहीं पर ऑडिटोरियम में ही. एनीवे, तो झाड़ू लगा रहे थे. एक दिन उनको एक एंकल बेल मिला. क्या बोलते हैं, नुपुर. नुपुर मिला. अब वो नुपुर लिए, शीर्ष लगाए, बहुत सुंदर नुपुर था. स्पर्श होते हैं उनमें कुछ विकार उत्पन्न हुआ. इस प्रकार से सेवा कर रहे थे, इस प्रकार से सेवा कर रहे थे कि श्रीमती राधा रानी के कृपा पात्र हो गए थे. राधा रा और जब झाड़ू मार रहे थे तो उनके आंखों से अश्रुधारा बह रही थी. राधा कृष्ण के प्रेम में आंखों से अश्रुधारा बह रही थी. इसलिए राधा रानी ने कृपा बरसाने का विचार किया कि इस पर मैं कृपा बरसाऊंगी. और राधा रानी अपना नुपुर जान करके छोड़ दी थी. तो झाड़ू मार रहे थे तो नुपुर मिल गया. जब यह नुपुर मिल गया तो राधा रानी गई. इससे पढ़ूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तब दो घंटा लगेगा. इसको बंद करता हूं, जितना याद है वही बताऊंगा. तो राधा रानी सखियों से, किस सखी ने कहा, हे स्वामिनी, आपके एक पैर में नुपुर है, आपके दाएं पैर का नुपुर कहां गया. तो अरे सही में नुपुर नहीं है, कहां गया. तो कहा, सेवा कुंज में मैं नृत्य कर रही थी, शायद वहीं पर गिर गया होगा. तो राधा रानी ने विशाखा से कहा कि हे विशाखे, तुम जाओ और नुपुर लेकर के आओ. विशाखा जी गई. श्यामानंद प्रभु तो झाड़ू लगा रहे थे, उसी में मग्न थे, झाड़ू लगाने में मग्न थे. विशाखा जी अति सुंदरी, वे आई ब्रह्मचारी जी के सामने. विशाखा जी आई और कही कि बाबा, आपने क्या इधर नुपुर पाया है क्या. श्यामानंद को नुपुर मिला था, वो अपने शीर्ष लगाए, बाद में अपने बहिर्वास में बांध लिए थे, अपने पास रख लिए थे. तो कहा, हां यह नुपुर यहां पर मिला. तो उन्होंने कहा कि आप ये नुपुर दे दीजिए. तो उन्होंने कहा कि आप हैं कौन जो नुपुर मांग रही हैं. तो उसने कहा, मैं इस गांव की ग्वालिन हूं, ग्वाले की बेटी हूं, लाली हूं, आप दे दीजिए. तो कहा, ये अब नुपुर आपका है. तो कहा, नहीं, हमारे यहां एक नई नेवली दुल्हनिया आई है, शादी ब्याह करके आई है, उसको जा रही थी, इसलिए गिर पड़ा उसका. तो कहा, अच्छा आपका नहीं है. कहा, नहीं मेरा नहीं है. तो कहा, ठीक है, ये नुपुर जिसका है उसको बुला कर लाइए. पहले पहचान होना चाहिए ना, पहले पहचान होगा तब मैं दूंगा. तो उसको बुला करके लाइए. तो विशाखा ने कहा, ये तो बाबा जी बड़े हठीले लगते हैं. तो विशाखा जी गई राधा रानी के पास और कही कि ये बाबा को मैं पहले बार देखी हूं और ये बड़ा हठीले लगते हैं. अरे इनको स्त्री से क्या लेना देना. और मैं उनसे कहा भी कि नई दुल्हनिया है, कभी नई ब्याह हुआ है, वो आई है यहां पर, तो आपसे मिलना चाहते हैं. कहते, नहीं, उसी को दूंगा जिसका नुपुर है. तो राधा रानी तो यही चाहती थी. राधा रानी तो श्यामानंद पर कृपा बरसाना चाहती थी. तो कही, चलिए. तो राधा रानी वहां से तुरंत चल दी. सखियों के बीच में घिरी हुई राधा रानी आई और एक कुंज के निकुंज, कृष्ण जिसमें निवास करते हैं उसे कुंज कहते हैं और राधा रानी जिसमें निवास करती हैं वो निकुंज कहलाता है. कुंज में दिखाई पड़ सकता है बाहर से कौन बैठा है. कुंज में केवल टहनियां होती है नीचे से ऊपर तक, लेकिन निकुंज में पत्ताएं भी होती हैं. कुंज और निकुंज का यही अंतर है। निकुंज में पत्ता भी होता है, दिखाई नहीं पड़ता है बाहर से कौन आ रहा है या कौन जा रहा है। तो राधा रानी निकुंज के पास खड़ी थी, अंदर नहीं थी, बाहर ही खड़ी थी। विशाखा जी गई कि चलिए, वो सखी अब आ गई है जिसका नुपुर है। तो श्यामानंद तो बड़े खुश हुए और नुपुर लेकर के आए, और नुपुर लेकर के आए और नुपुर जेव ही अर्पित किए और राधा रानी के चरणों में पड़ करके दंडवत प्रणाम किए, तो राधा रानी उन पर कृपा बरसाई। विशाखा से कही कि इसको राधा कुंड में स्नान कराओ। राधा कुंड में जेव ही स्नान किए, वो सखी भेष धारण कर लिए, वो सखी हो गए। तब राधा रानी अपने हाथों से श्यामानंद प्रभु का उस नुपुर से श्रृंगार किया, यहां पर तिलक लगाया, तिलक लगाया। और इतना करने के बाद में राधा रानी अंतर्ध्यान हो गई, सब सखियां चली गई। तब श्यामानंद प्रभु अपने असली स्वरूप में आए। तो अरे मैं स्वप्न देख रहा हूं कि क्या देख रहा हूं, ये क्या हो रहा है। लेकिन अब देखे तो राधा रानी ने जो नुपुर से तिलक लगाया था वो तिलक यथावत वैसे ही था। तो उन्हें आश्चर्य हुआ, वे आकर के समस्त घटना को श्रीपाद जीव गोस्वामी से बतलाए। जीव गोस्वामी जब सुने तो कहे भाई देखो तुम मुझसे कहा ठीक है, अब किसी से इस बात को तुम मत कहना और तुम अपना सेवा करते रहो, भजन करते रहो। श्यामानंद प्रभु इस प्रकार से अपने भजन सेवा में थे। अब यह बात फैलते फैलते, चूंकि ये बतलाए नहीं थे, जीव गोस्वामी बतलाए नहीं थे किसी को, श्यामानंद प्रभु का इतना नाम था ब्रज में, कम ही समय में कुशाग्र बुद्धि के थे। अब पहले ऊर्ध्वपुर तिलक करते थे, अब ऐसे तिलक करते थे साथ में एक बिंदी इधर और चारों तरफ इधर, तो सब लोग थोड़ा लगते थे कि जैसे यहां पर अब असीम प्रभु ही हैं। तिलक ऐसे लगाए हैं ठीक है, थोड़ा चंदन इधर लगा लें वो भी ठीक है, लेकिन कोई ऐसे लड़की जैसे इधर लगाना शुरू करें बिंदी इधर से इधर तक है तो मंदिर में कल हाला होने लगेगा है कि क्या हो गया, ये कौन संप्रदाय ज्वाइन कर लिए असीम जी है, कहीं सखी संप्रदाय ज्वाइन कर लिए, क्या कर लिए, बात होने लगेगा। तो पूरे ब्रज में बात होने लगा कि श्यामानंद प्रभु ऐसे हो गए, ऐसे हो गए। जब यह बात होने लगा पूरे ब्रज में, तो होते होते यह बात पहुंच गया गौरमंडल में। जब हृदय चैतन्य प्रभु नहीं कौन थे गुरु हां जब उनको मालूम हुआ तो गुरु का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उन्हें बड़ा दुख हुआ, भागते भागते आए ब्रजमंडल और आकर के श्यामानंद से मिले। श्यामानंद से सुने गुरु गुरुदेव आए हैं, तो वो आए सत्संग दंडवत प्रणाम किए। तो उन्होंने देखा श्यामानंद के सिर में ठीक वही बिंदी जो उन्होंने सुना था। अब तो ऑलरेडी डिस्टर्ब थे वे सुन करके कि मैं दीक्षा दिया इसको ऐसे भेजा था और ये और कुछ दूसरा दीक्षा ले लिया, पता नहीं ये क्या हो गया। और राधा रानी ये बिंदी तो लगाई ही, उनका नाम बदल दी थी, उनका नाम हो गया था श्यामानंद, फ्रॉम कृष्णदास से उनका नाम हो गया था श्यामानंद। तब लोग श्यामानंद जानते थे, तो बड़ा गड़बड़ हो गया। अब अधिकार था उन दिनों शिष्यों पर गुरु का, आजकल अधिकार कम है। गुरुजी जोर से थोड़ा बोल दें शिष्य को, लगाए गुरुजी ऐसे हमारे गुरु ठीक नहीं है, वो डांटते रहते हैं, उसका गुरु कितना अच्छा है, अमेरिका का टिकट भी देता है, प्यार से बात करता है, हमारा गुरु कल डांटता रहता है, गुरुजी को छोड़ देंगे। श्यामानंद प्रभु को उनको गुरुदेव बड़े गुस्सा से देखने लगे, डांटने फटकारने लगे, इतना ही नहीं मारने भी लगे, मारे, लेकिन फिर भी शांतिपूर्वक श्यामानंद प्रभु सब सहन किए। और मारे ही नहीं, जो बिंदु था उसको छुड़ाने लगे, खूब रगड़ने लगे, वो काहे को छूटने जाए। इसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मेरे पास है। जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरी माँ ने एक यहां पर काला बिंदी लगवा दिया, बच्चों को जीने के लिए यहां पर लगाते हैं, वो गोदना बोलते हैं बिहार में, गोदना गोदवा दिया इधर। जब पिता अभी भी यहां पर है, जब पिताजी ने देखा ये काला गोदना वाये खेत से देखे, उन्हें बहुत गुस्सा आया, वो लगे छुड़ाने, लगे रगवे, वो तेरा त्रिनयन हो गया था यहां पर, ये बड़ा हो गया था, कितना भी किया है तक वहीं पर है, निकला नहीं है। तो एक गोदना, वो तो राधा रानी गोदी थी, वो कौन हटा सकता है। खूब प्रयास किए लेकिन नहीं मिट पाया। जीव गोस्वामी सब जानते थे लेकिन कुछ भी नहीं बोले। एक गुरु और शिष्य के बीच में, मैं के बीच में आने जाऊं, जीव गोस्वामी बीच में नहीं आए। उस रात को श्रीमती राधिका आई और हृदय चैतन्य प्रभु को बहुत डांटी, अरे मैं उसे संवारी हूं, मैं उसे तिलक दी हूं, तुम कौन होता है, या संसार में कौन कोई होता है जो हमारे द्वारा प्रदत्त इस तिलक को मिटाने वाला। मैं उसको तिलक दिया, मैं उसको श्यामानंद नाम दिया। और उसके बाद में हृदय चैतन्य प्रभु बड़े, उन्हें ग्लानि हुई, बहुत रोने, राधा रानी से क्षमा मांगे और सुबह में श्यामानंद प्रभु आए तो उनसे भी क्षमा मांगे। गुरु शिष्य क्षमा मांगता है। और बाद में आलिंगन किए उनको और आशीर्वाद दिए और चले गए। कालांतर में श्यामानंद प्रभु, श्रीनिवास प्रभु और नरोत्तम दास ठाकुर, ये तीनों लोग रूप गोस्वामी के, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ था, उन ग्रंथों के साथ में जीव गोस्वामी इन लोगों को भेजे प्रचार करने के लिए। ये लोग लेकर के आ रहे थे तो रास्ते में बिहार और बंगाल के बॉर्डर में एक राजा था और डकैत था। उसे समझा गाड़ी पर माल लादा हुआ है तो उसने चोरी करा लिया रात में। तो श्रीनिवास प्रभु वहां बंगाल में ठहरे और नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु वहां से चल दिए। तो अपने गुरु के पास आए, गुरु ने उन्हें आदेश दिया। उड़ीसा में प्रायः चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा लुप्त प्राय हो रहा था, तब उन्होंने आदेश दिया श्यामानंद प्रभु को, आप उत्कल जाओ और वहां पर गौर नित्यानंद के उपदेशों का, शिक्षाओं का प्रचार करो। तो वहां जाकर के बड़े धूमधाम से उन्होंने प्रचार किया, बहुत प्रचार हुआ। और बाद में बंगाल आए, यहां भी प्रचार किए लेकिन मुख्यतः वे उड़ीसा ही रहे और अंततः वे वृंदावन में गए और वहीं पर, उड़ीसा में ही एक राधा गोविंद मंदिर स्थापित किए, वहीं पर उनका देहांत हुआ। और उनके ठाकुर जी थे वो श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, आज भी राधा श्याम सुंदर घेरा में श्यामानंद प्रभु का समाधि है। आज के दिन ही उनका पुष्प समाधि है, आज के दिन ही उनका तिरुभाव हुआ था। तो इस प्रकार से श्यामानंद प्रभु इस धराधाम पर कुछ दिन रहे और संसार को छोड़ करके भगवान के नित्य लीला में प्रवेश हो गए।